संतप्त मानस शांत हो, जिनकी गुणों के गान में परिवर्धमान महान जिन दो सौ चौहत्तर पेज पर तीसरा पैरा निष्कर्ष का है। इस प्रकार इस कलश में इंद्रियों के माध्यम से विषय विकार में फंसे और नयों के विकल्प जाल में उलझे आत्मा को निज स्वभाव से भ्रष्ट बताकर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा निज शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। 144वीं गाथा में बताया था कि मति ज्ञान के द्वारा इंद्रियों और मन के माध्यम से ये बाहर में लगा रहता है और श्रुत ज्ञान के विकल्पों के जाल में उलझा रहता है। निष्कर्ष में कहा है कि मति ज्ञान के इंद्रियों से अपने विषय को समेट कर और श्रुत ज्ञान के नए विकल्पों का समन करके आत्मसन्मुख होता है, वो आत्मा के अनुभव को प्राप्त करता है। देखो ये इस कलश की भाषा पुरुषार्थ प्रेरक भाषा होने से ऐसा लगता है जैसे एकदम तीव्र कर्तृत्व के अभिमान से भरी है कि अपने ज्ञान को मति ज्ञान तत्व से समेट लिया, वहां नहीं जाने दिया, विकल्पों की जाल का समन कर दिया पर अंदर में भगवान आत्मा को ले गया। यदि वीर रस में इसका वर्णन करेंगे ना तो जो आश्रव अधिकार में या संबर के शुरू में जो समय सार कलश में एक छंद आता है और जिसको पादमी जी बहुत बोला करते थे, आश्रव पछारो रण खम्भ तूर डालो, है ना, आता ना ऐसा कलश, ऐसा वीर योद्धा उसने आत्मा को। तो कवि के कहने का तरीका है वास्तव में ऐसी कोई उखाड़ पछाड़ कर रहा है, एकदम जांग ठोक के वो खड़ा है, ऐसा कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत है ऐसा कुछ नहीं है। वो तो है तो वो ही कि उसे इंद्रियों के पर के जानने का विकल्प टूट गया ना, अब आंख से कुछ देखने का विकल्प ही नहीं होगा तो फिर वो आंख क्यों खोलेगा। पांच इंद्रियों के माध्यम से सिर्फ पर पदार्थ जानने में आता है, पर पदार्थ के जानने के निषेध की बात नहीं है, पर पदार्थ को जानने के रस का निषेध हो गया है ना। जैसे आप यहां बैठे शांति से प्रवचन सुन रहे और सामने से सड़क पर बहुत बाजे बजे, हॉर्न बजे, एकदम हलचल हो तो सबका ध्यान यहां से हटकर कान उधर लग जाते हैं, क्या है क्या है, फिर आंखें देखने लगती हैं। जो शब्द होते हैं वो तो चुपचाप शांति से यहां बैठे रहते हैं, गर्दन भी पीछे को नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपचाप ऐसा करके देखने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो चुपचाप उठ के चले भी जाते हैं और देख के आते क्या है क्या है कि बाजे बज रहे थे ना, बाजे बज रहे थे ना। तो मैंने कहा आज तक तुमने बाजे बजते नहीं सुने कभी? नहीं नहीं नहीं, किसी की बारात थी ना तो आज तक किसी की बारात नहीं देखी। हम तो ये कह रहे कि तुम क्यों वहां गए प्रवचन छोड़ करके, और वो कहे बारात थी ना, फलाना था ना, वो बराबर क्या था वहां इसका ज्ञान करता है। तो असलियत में ये इस टाइप का पुरुषार्थ है कि उसे वहां क्या हो रहा है ये जानने का बिल्कुल रस नहीं है। ओढ़े पड़ रहे हैं, बहुत जोर की बारिश हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, लगता है ना। देखो इस लोक में कहां क्या नहीं हो रहा है ना, कहीं बड़ी क्रांतियां हो रही हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, मारे जा रहे हैं लोग, सब हो रहा है ना। लेकिन आखिर ये ज्ञानी जीव यदि उन सब का रस छोड़कर अपने में नहीं जाए तो कौन सा समय ऐसा है कि बाहर में कुछ जानने को नहीं रहा, अब इसलिए जब अंदर में आराम से जाएगा, क्या बाहर जब कुछ नहीं होगा ना तब जाएगा। इस नाम पर हम क्या करते हैं कि शांति यहाँ नहीं है तो एकांत में चलो, फिर वहां तीर्थ पर चलो, उधर चलो, वहां वहां चलो। अब वो सब जगह जा जा करके देखता है, यहाँ तो बिल्कुल शांति है, कुछ भी आवाज नहीं आती है। अरे भाई बाहर तेरे को जानने की का रस है ना, तो वो वैसी शांति में तुझे सन्नाटा सुनाई देगा, तेरा उपयोग अंदर में नहीं जाएगा। तो पर के जानने का रस टूटे और अपने आत्मा के जानने का रस इतनी तीव्रता से हो कि अपने आप उपयोग हटकर और अंदर में चला जाए। अब उसी का नाम इंद्रियों से समेट कर और उसी का नाम है विकल्पों का समन करके जो आत्मा अपने में जाता है। मतलब इस साधारण सी घटना को वीर रस में प्रकट करें तो कैसे प्रकट करते हैं, ऐसा एक कलश है जी, बस उसको वीर रस में उन्होंने प्रकट किया है तो उसमें ऐसा लगता हो ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा, हमको बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। पुराने जमाने में राज दरबार में जो कवि हुआ करते थे तो उनको एक समस्याएं देते थे, जैसे उन्होंने कहा सामने एक रूख ठूंठ खड़ा है सूखा बिल्कुल, कोई पेड़ टूट गया था फिर अपने आप वो सूख गया मर गया अब वहां खड़ा है वैसे ही, तो कहा कि इसके बारे में कविता बनाओ। क्या मेरे कहने का मतलब क्या कि कोई सुंदर चीज में तो दुनिया बनाती है ना, अच्छा बाग बगीचा हो हरियाली हो, कोई सुंदर लड़की हो लड़का हो, कोई ताजमहल जैसी बिल्डिंग हो कि उसके बारे में बनाओ तो लोगों को लगता है कि भाई इसमें कुछ है, दम है। और अब उस ठूंठ के बारे में क्या कविता बनाए, ऐसा लगता है कि इस ठूंठ के बारे में क्या कविता बनाएगा। तो वो तो ये उदाहरण बनाने के लिए बताते हैं कि एक वैयाकरण था, वैयाकरण ने व्याकरणाचार्य इसने किया था, व्याकरण का विशेषज्ञ था, तो उसने बनाया सुस्तम काष्टम तिष्ठत्यग्रे, माने तुम्हारे सामने एक सूखा काष्ट खड़ा है। बात तो हो ही गई ना। फिर एक कवि हृदय हमारे यहां उसमें बोलते थे साहित्याचार्य से पूछा, कहते काव्य तीर्थ व्याकरण तीर्थ होते थे ना साहित्याचार्य व्याकरणाचारी, तो साहित्याचार्य से पूछा फिर बोलो इस कवि के बारे में बताओ, तो उसने कहा बोला नीरस तरुवर बिल सतपुरता। अब एक ही चीज है कि रस से रहत वृक्ष सामने बिलसत माने सुहायमान हो रहा है, खड़ा तो वही टूटे ही है। तो वैयाकरण ऐसे रूखे होते हैं कि उस बात को कितने चार डंडे मार दिए उसने, सुस्तम काष्ठम तिष्ठत तग्रे, क्या फटाफट चार डंडे मारे हो ना, ऐसा लगता है ना, सुस्तम काष्ठम तिष्ठत तग्रे। और उसी को कवि अपने साहित्यिक भाषा में बहुत मधुरता से बोलता है नीरस तरुवर, माने उसे सूखा हुआ काष्ठ नहीं करता है, वो रस रहित लकड़ी को भी इतने सरस ढंग से बोलता है कि नीरस तरुवर और बिलसत पुरुतः। अब क्या फर्क है मालूम आपको, उसमें महाप्राणों का उपयोग ज्यादा हुआ है, उसमें कठोर शब्दों का प्रयोग है ना ज्यादा हुआ है, जो था है एक महाप्राण है एक कठोर शब्द है, और इसमें ह्रस्व अक्षरों का प्रयोग ज्यादा हुआ है ना। पर एक नी छोड़ दो शुरू की, बाकी सब नी रस से तरु वर से बिल सत्य पूर्वतः सब हृष्व अक्षर है जिसमें बोलने में जोर लगता ही नहीं है। तो एक ही बात को चाहे हम ऐसा कह दे रहे कि पर से हटाकर उसको तोड़ दिया वहां से लाकर ऐसा करके इसका एकदम आत्मा में ले गए कुछ, और चाहे ऐसी भाषा में बोलो कि उपयोग में पर को जानने का कोई रस रहा ही नहीं है तो उपयोग जाएगा कहां, आखिर समेट कर वो अपने आत्मा में लग गया। कहने का मतलब बात वही की वही है इसमें जो भाषा है उससे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा उग्र पुरुषार्थ करना है हमें तो कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं करने रूप उग्र पुरुषार्थ है, जिसमें कुछ नहीं करना है ऐसा उग्र पुरुषार्थ है। मुनिराज जंगल में बैठे हैं, बिल्कुल आंख कान बिल्कुल बंद हैं, जैसे वो पल खाज खुजावती, मन कोई जानता ही नहीं है कि इस सचमुच पत्थर का की शिला है, मैं मूर्ति है कि वास्तव में ये कोई व्यक्ति है, इतना निष्क्रिय बैठा है, समझे ना। वाणी भी बिल्कुल चुप है और मन भी एकदम चंचलता खत्म हो गई है। तो ऐसी को अब उग्र पुरुषार्थ कर रहा है वो भगवान आत्मा में छपक श्रेणी में चढ़ रहा है। इन करुणा योग वालों से पूछो अभी तब ये कहेंगे इस गुणस्थान में इस जगह पर पहुंचेंगे, वहां इतनी प्रकृतियों को छार छार कर दिया, फलाने को तोड़ डाला, फिर उसको उसको नष्ट किया, फलाने को भाई प्रकृति को आठवें गुणस्थान में छपक श्रेणी का वर्णन करेंगे ना। वो जो अत्यंत शांत परिणामों की उग्रता से आत्मा में जाने का काल है और उसे कर्मों से जैसे लड़ाई हो रही है और एक एक योद्धा को कैसे मारा, जैसे मदन पराजय ग्रंथ सुना कभी, मदन पराजय पढ़ा कभी, नाम सुना है? नहीं नहीं सुना, मैंने किताब का नाम ही नहीं सुना। ये संस्कृत का बहुत अच्छा नाटक है। मदन माने कामदेव और पराजय माने उसकी हार, माने कैसे कामदेव को कैसे जीता एक मुनिराज ने जंगल में बैठे बैठे। अगर मोह, एक ऐसा ग्रंथ भी है जो मोह मोह को जीतने का है ना, क्या नाम है उसका, मोह को कैसे जीता, तो बराबर युद्ध का वर्णन किया है और भयंकर महाभारत जैसा युद्ध को पूरा का पूरा वर्णन कर दिया है। एक सिद्ध चक्र की जयमाला में आता है ना, पहली जयमाला है उसमें आता है ना, जय करण कृपाण सु प्रथम बारे मेथ्यात सुभट कीनो प्रहारे। अब ये ऐसी सचित्र कविता है कि इसकी एक एक पंक्ति पर एक एक चित्र बनाया जा सकता है। मेघदूत पर 52 छंद हैं तो 100 चित्र बना दिए चित्रकारों ने। क्या अब देखिए, जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात सुभट कीनो प्रहार। हम एक मिथ्या तुम्हारा भयंकर राक्षस जैसा बना दे, रावण जैसा, और फिर यहां करण रूपी कृपाण एक तलवार लेके खींच की और फिर एकदम जोर से उसे क्या मारा। तो ये 3-4 चित्र बन सकते हैं ना, एकदम ऐसा मारा, एकदम यहां तक लाए, एकदम तलवार अंदर घुसेड़ दी, कई चित्र बन सकते, कभी बन सकते है। जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात सुभट कीनो प्रहार। और है कुछ नहीं, कहन लब्धि का काल है, तो एकदम अंतर्मुखी वृत्ति जैसे कुछ नहीं हो रहा, ऐसी बात है। जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात सुभट कीनो प्रहार दृढ़ कूट विपर्य मति उलंघ पायो समतल थर अभंग। पूरी जयमाल में ऐसा युद्ध का वर्णन है। सभी लोग बोलते हैं ना, तो छोटी ई का उच्चारण करना कोई नहीं जानता। छाला का पाठ करते हैं ना, तो उसमें जो वो आता है छोटी ई जहां जहां, उसको बड़ी ई के रूप में ही बोलते हैं और उसे वो बहुत भद्दा लगता है। मतलब जैसे मति 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 को मति बोलते हैं, मति की छोटी ई बोलना जानते ही नहीं है। वो बुद्धि आते हैं ना, वो छोटा लगी शुरू की लाइन ही है, ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते हैं भय बंद कहें सी गुरु करुणाधार। तो आगे कोई एक शब्द आता है, तो उसमें जो छोटी की मात्रा है सबने बोलते उसे बड़ी की मात्रा कर देते हैं, उसमें बिल्कुल स्वरभंग हो जाता है। वो छोटी ई को तुम छोटा आ आई बोला करे, बुद्धि तो बुद्धि की धी बड़ी कर देते, बुद्धि छोटी है ना, नहीं बोलते हैं सब यहां बोलते हैं जितना आप पाठ करते हो, इसमें भी यही सब गलतियां होती हैं, मैं वहां मुझे वहां खटकती हैं वो जो इन्हें कैसे तैयार करवाए हैं ना, उनमें भी ऐसी गलतियां हैं क्या। एक आध दफे तो मैं खुद बैठा था और मैंने बहुत कोशिश की थी कि ये सही छोटी की मत, लेकिन नहीं, उन्होंने बोली तो उसे बड़ी ही बोली और फिर मैंने कहा रहने दो, और वो वैसे ही चलता है, फिर कोई उपाय नहीं है। तो एक कलश पूरा होता है, अब कर्ता कर्म अधिकार में जो ये प्रकरण चलाया था कौन सा, कि विकल्प के जाल से कैसे मुक्त होना, एक न ऐसा कहता है दूसरा न ऐसा कहता है, ये नयों का विकल्प का जाल है और भगवान आत्मा तो जैसा है वैसा है, उसके वो प्रकरण यहां पूरा खत्म किया। अब इसके बाद जो पांच कलश हैं वो पूरे कर्ता कर्म अधिकार के उपसंहार हैं। एक कलश जो है 95, ये मुझे बहुत प्रिय है और कई दफे बीच बीच में कहीं भी प्रकरण आता है तो मैं इस पर कई दफे व्याख्यान कर चुका हूं, तुमने भी सुने होंगे। विकल्प कह परम कर्ता विकल्प कर्म केवलम न जातु कर्ति कर्मत्वम सविकल्पस्य नश्यति। बोलो हिंदी का बोलो, कह रहे हैं कि भगवान आत्मा पर का कर्ता तो है ही नहीं, क्योंकि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, इसलिए पर में तो कुछ करने जा ही नहीं सकता है, लेकिन पर के करने का विकल्प इसको हो सकता है। तो जब ये पर के करने के विकल्प में उलझा होता है तो आचार्य कहते हैं कि वो वास्तव में उस विकल्प का कर्ता तो है लेकिन पर का कर्ता नहीं है। आगे जाकर के ये अज्ञानी जीव की बात है, ज्ञानी जीव तो उसको भी विकल्प खड़े होते हैं लेकिन वो विकल्पों का कर्ता नहीं होता, नहीं होता माने नहीं बनता। परिस्थिति तो दोनों में एक सी ही होती है, परिस्थिति एक सी होती है माने अज्ञानी को भी करने का विकल्प होता है और ज्ञानी को भी करने का विकल्प होता है, ख्याल में है ना। बाहर से देखेंगे तो दोनों एक से ही दिखाई देंगे, लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही पर पदार्थों के तो कर्ता है ही नहीं, लेकिन जो विकल्प हुआ तो अज्ञानी उन विकल्पों का कर्ता है। तो उसका नाम क्या रखा है यहां पर, विकल्प कह जो है ना, विकल्पक माने विकल्पम करोति विकल्प कह, जो कोई भी चीज वो करता है ना उसमें का लगा देते वो उसका कर्ता बन जाता है। तो ग्राहक तो माल का खरीदने वाला, ज्ञायक जानने वाला, दर्शक देखने वाला होता ना का लगाते, तो अपन ने ऐसे ही बनाया विकल्पक के विकल्प को करने वाला। तो कहते हैं कि जब कोई आदमी पर के करने का विकल्प कर रहा है तो वो वास्तव में पर का नहीं उस विकल्प का करता है, और उसका नाम हमने क्या रखा, विकल्पक। तो अब फिर कहेंगे ज्ञायक करता नहीं है और विकल्पक करता है, और है वो एक ही व्यक्ति, उसी को ज्ञान स्वभाव की तरफ से देख रहे तो ज्ञायक कह रहे। तो ज्ञायक तो वो जो उस वक्त विकल्प कर रहा है ना, और जिसे यहां विकल्प कहा जा रहा है, विकल्पक कहा जा रहा है, उस समय वो विकल्प होते हुए वो जान भी रहा है ना, तो ज्ञानी तो उस ज्ञान क्रिया का करता है, और अज्ञानी उस विकल्प का करता है, और पर का करता न ज्ञानी है न अज्ञानी है, पर हम बोलते हैं ज्ञायक करता है। तो ज्ञायक नाम क्यों बोलते हो उसे? फिर विकल्पक बोलो, विकल्प का, और पर का है तो पर का करता बोलो, है ना। कुंभकार बोलते ना अपन, वो घड़े को बनाने वाला कुंभक, कुंभकार कहते कुंभक से कुंभकारा बन जाएगा ना, तो कुंभक, तो कुंभक माने कुंभम करोति इति कुंभका। तो वो कुंभक मतलब जिसे अपन कुंभक कह रहे हैं वो कुंभक नहीं है, वो विकल्पक है, क्योंकि वो कुंभ घड़ा बनाने का विकल्प कर रहा है। वास्तव में घड़ा बनाने की क्रिया का कर्ता वो नहीं है, और उसी वक्त वो कुमार यदि सम्य दृष्टि हो तो वो ज्ञायक है। वो विकल्पक भी नहीं है और कुंभक भी नहीं है, और वो ज्ञायक है। कि तुम कौन हो? कुमार हो? नहीं, मैं तो ज्ञायक हूं। अब ये ज्ञायक आत्मा वाला ज्ञायक नहीं है, ये बनते हुए घड़े को देखने वाला ज्ञायक है। वो एक 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 ही जगह वो एक घड़ा बना रहा है इस तरह से हाथ से बराबर, ख्याल में ना। अब तीन क्रियाएं हो रही, एक घड़ा बन रहा, एक उसे घड़ा बनाने का विकल्प हो रहा, और एक घड़ा बन रहा है और मुझे विकल्प हो रहा है, इसको जान रहा है वो कुमार, है ना। अब कुमार का एकत्व किसमें है? घड़ा बनाने की क्रिया में है तो वो कुंभक है, यदि उसका एकत्व उस विकल्प में है तो वो विकल्पक है, और उसका एकत्व जानन क्रिया में है तो वो ही ज्ञायक है। फिर कहेंगे वो घड़ा बनाता हुआ जो कुमार है यदि वो ज्ञायक है तो उसे बंध नहीं होता, यदि वो विकल्पक है तो उसे बंध होता है, और वो कुंभक है, कुंभक तो है ही नहीं। ये तीन स्थितियां हैं। वस्तु स्थिति एक ही है, सामने से फोटो बनेगी तो एक सी खिंचेगी, उसे बाहर कोई अंतर नहीं आएगा, और ये उनके अंतर का अंतर है जो वो यहां बता रहे हैं कि विकल्प कह परम करता विकल्प कर्म केवलम। अब इसको हिंसक इस शब्द से घटित करें अपन, ऐसे विकल्पक है ना, ऐसे हिंसक। तो हिंसाम करो तीति हिंसक, तो एक तो वो जिसको मार रहा है वो मर रहा है, उसकी क्रिया का करता है वो हिंसक, हाँ समझे ना। तो वो कहते हैं कि वो हिंसक शब्द तो उस हिंसा नामक क्रिया का करता है, वास्तव में उसे जो हिंसा करने का भाव हो रहा है वो उस भाव का करता है, और ज्ञानी है यदि सम्य दृष्टि तो उसी वक्त न उस हिंसा रूप क्रिया का करता हो रहा है और न मारने का भाव हो रहा उसका करता हो रहा है, बल्कि उसके ज्ञान के द्वारा वो उसे जान रहा है तो वो ज्ञान क्रिया का करता हो रहा है, वो हिंसक, वो ज्ञायक है। कि हिंसक हिंसक नहीं ज्ञायक है, हिंसक हिंसक नहीं हिंसा करने का विकल्प करने वाला है। अब यहां पर वो प्रकरण बता रहे हैं कि जो विकल्पक, उसका नाम विकल्पक क्यों पड़ा? क्योंकि वो विकल्प का करता है, और विकल्प कर्म केवलम, उसका काम क्या है? अपन कहते हैं कुंभक, कुंभक कुमार का क्या काम है? अपन छूटते ही कहें ना घड़ा बनाना। धोबी का क्या काम है? रजक। तो कहें कपड़ा धोना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ऐसे ही वो कहते हैं कि उस अज्ञानी का कर्म माने कार्य एकमात्र वो विकल्प है। विकल्प कह कर्ता और विकल्प कर्म केवलम, और वो विकल्प है उसका कर्म है। कहते पर का वो कर्ता और नहीं है, इसलिए पर में जो कुछ हुआ उसके कारण रंच मात्र भी बंध नहीं होता। तो अपन ने कई दफे उदाहरण दिया है कि सामने एक आदमी की हत्या हो गई और एक आदमी ने ये कहा कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, और कहते हुए गोली चलाई और गोली से वो मर गया। तो किसने मारा, हिंसक कौन है, उसके मरने रूप क्रिया का कर्ता कौन है? अभी इसके इसकी पार्सिंग हो रही है, इसकी जांच हो रही है, इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। वो जो डॉक्टर करते हैं ना, वो डॉक्टर ने ओपन करें इसका, तो वो कहते हैं कि वो जो मरा है उसकी क्रिया का कर्ता तो जो मरा है वो ही है। जिसने गोली चलाई, जिसकी गोली उसे लगी और वो मरा, वो नहीं है। दुनिया कैसे माने, पागल कहेगी? गवाह सफाए सब मौजूद हैं, फिल्म बन गई पक्की कि उसकी गोली चलाई उसने, वो मर गया बाकायदे। वो कहते नहीं मरा, कहते वो मारने का जो भाव उसने किया था, उस भाव का वो करता है, भाव ही मात्र उसका कर्म है। विकल्प कर्म केवलम, वो जो उसने भाव किया था वो उसका कर्म है। और यदि वो सम्यक दृष्टि है, सुनना, तो कहते हैं ना वो भाव कर्म है और ना वो क्रिया कर्म है। वो जो ऐसी क्रिया होते वक्त उसके ज्ञान का गेय बनी, तो वो जानन रूप जो क्रिया हुई वो ज्ञानी आत्मा उसका करता है। अब तीन करता है, हो गया लग रहा है। तो अब वो कहते हैं कि उसे फिर कर्म का बंध हुआ। तो कर्म का बंध होने का कारण क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि वो जो वहां क्रिया हुई उसके कारण रंच मात्र भी बंध नहीं हुआ। अब अभी बंध नामक जो क्रिया हुई उसके बारे में बात चल रही है। कहते उसके कारण रंच मात्र भी बंध नहीं हुआ, क्योंकि उस वो क्रिया उसने की ही नहीं। बहुत अद्भुत बात है, इस जगत के गले उतरना ही मुश्किल है। कहते वो उसने की ही नहीं कि सबने देखा हमारे आंखों से, कि तुमने देखना जानते ही नहीं, तुम्हारी विवेक की आंखें बंद हैं, तुम विवेक की चक्षु बिल्कुल बंद है तुम्हारी, तुमने कुछ नहीं वहां उसने किया। उससे तो जब किया ही नहीं तो बंद क्यों होगा? फिर जो कहते हैं कि जो मारने का भाव किया था ना, वो है विकल्प, और उसका कर्ता तो विकल्पक है। जहां आत्मा अज्ञानी होए तो उसका वो करता है। अब देखो, ज्ञानी तो उसका कर्ता है ही नहीं, तो ज्ञानी को तो उसके कारण भी रंच मात्र बंद नहीं हुआ, और उसकी ऐसी मान्यता है नहीं, मिथ्यात्व तो है नहीं, इसलिए अपन कहते ज्ञानी को बंद ही नहीं हुआ। कहते क्या नहीं कहते, ज्ञानी को बंद नहीं हुआ। और अज्ञानी को, अज्ञानी को भी जो उसका कर्ता है, अब एक हजार एक किलो पाप लगा तो एक ग्राम पाप लगा उसके कारण, देखो वो विकल्पक को भी। लेकिन वो जो मान्यता है कि मैं इसे मार सकता हूं, कि मैंने इसे मारा 999 ग्राम तो उसके कारण लगा। और जो वो बिल्कुल कितना साइलेंट है, देखिए वो बिल्कुल श्रद्धा के लेवल की बात है, ना आवाज निकल रही, ना मुंह से बोल रहा, ना कह रहा, ऐसा नहीं है ना, श्रद्धा के लेवल, यानी कितनी जो साइलेंट क्रिया है वो सारा बंध का मूल कारण तो वो है। ये जो कहते हैं अपने कहते हैं, इसमें क्या है कलश में, हे विकल्प ही कर्म, विकल्पक करता हो वे, वो विकल्पक आत्मा करता है और विकल्प उसका कर्म है, और उससे ज्यादा उसका नहीं है। कि मुल्ला की दौड़ कहां तक, कि मस्जिद तक, कि इस आत्मा ज्ञानी आत्मा की दौड़ कहां तक, कि विकल्प का कर्म। ये बहुत ऐसी पक्की बात है, ऐसा कहने की नहीं है। वस्तुतः इसके विकल्प करने के कारण पर द्रव्य में रंच मात्र भी कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि मुफ्त में ही बंद नहीं हुआ, कि खूब मार भी दिया और ऐसा भी कर लिया और विकल्प नहीं है, अच्छा बहुत प्रेम से लड्डू खाए और खूब मजा लिया और फिर बंद नहीं हुआ। ऐसे अपन ज्ञानी अच्छे, अपन ऐसे ज्ञानी अच्छे बन जाओ, तो हम कहते बन जाओ ना, ये सुविधा तुम्हें प्राप्त है ना, तुम बन जाओ ना ज्ञानी, ज्ञानी बन जाओ ना, बस अकेले ज्ञायक भाव बने रहो, उसी जानने रूप क्रिया के कर्ता बनो, उस विकल्प रूप क्रिया के कर्ता बनो ही नहीं। लेकिन अपने तुम अंदर में जाके देखो तो अज्ञान कितनी जोर से हिलोरे मारता है। मैंने ये मकान बनाया, मैंने ये पैसे कमाए, मैंने ये किताब लिखी, ये मैंने ये किया, मैंने प्रवचन किया, कितने कितने करे करे नहीं है। और उससे यदि कोई यहाँ पर उसकी सभा हो गए, तो उसकी जन्म जयंती मनाई जाए, उसकी सभा हो गए, और कोई आदमी कहे इनने कुछ नहीं किया, इतनी किताबें लिखी, ये झूठा अभिमान है। क्यों? वो बराबर बिल्कुल वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करे तो सारी सभा को और उसको कैसा लगेगा? बोला चावड़ा जी, और वस्तु स्थिति तो यही है। तो अब इसका नाम ये अनंत पुरुषार्थ है भाई साहब, इसमें वो वीर रस का स्फुरायमान होना है। इसको ये है विकल्प जाल से आत्मा को मोड़ कर, इसका नाम है वो। मेरे कहने का मतलब, जो पिछले कलश में मैं बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं कि मैं इतना वैसे ही बोल रहा हूँ, मेरे दो दिन से वो कलश मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो इसमें है क्या करने का, इसमें इतना उछाल रहे हैं, इतना इतने इस भाषा को, अभी उसी भाषा में उसको हम प्रतिपादन करते चले जाएं, तो सब लोग वही भाव लेके उठेंगे कि नहीं हमको तो बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, उसको पानी जैसा मोड़ना है। मैं कहता हूँ ना कि बंगाल की खाड़ी में वहां से गिरी गंगा गंगोत्री से, तो लाखों लीटर पानी बंगाल की खाड़ी पहुंचाने में एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा है, वो अपने आप पहुंच जाता है ना वहां। और बंगाल की खाड़ी से एक घड़ा भर के ले जाओ और गंगोत्री में डालना हो तो कितना मश्रम का काम है, हैं? तो ऐसा हमको वो लगता है पानी को मोड़ दिया, नीचे को बहने वाले को तोड़ के फिर उसी का उसे लाए और वहां जो उसी में डाल दिया, क्या मगर वो सब एक सहज भाव से होने वाली क्रिया है। वो जंगल में ऐसा पानी धारा में से बिछुड़ता रहता है और फिर लौट के उसी धारा में आकर के मिलता रहता है, उसे बुद्धिपूर्वक कोई कुछ नहीं करता है, क्या? देखो कैसे मालूम, कैसे दुष्चक्र का हो या सुचक्र का हो चलता है कि समुद्र में पानी है ना, अब वही पानी सूरज की गर्मी से उड़कर भाप बन के बादल बनता है, ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब वो नमक सब समुद्र में रह जाता है और वो सूरज की गर्मी सिर्फ पानी को उड़ाती है, देखो खारे पानी को नहीं उड़ाती है, क्या करती है? क्योंकि वो बरसात का पानी फिर वो मीठा होता है, फिर तो वो पानी उस दरिया में से उड़ता है, अब उड़ता आकाश के बहुत ऊपरी हिस्से तक चला जाता है, फिर वो वहां से जो भी हवा का निमित्त बना जो भी कुछ भी और आकर के कहां समुद्र से, माने बंगाल की खाड़ी माने समुद्र, और वहां से बिल्कुल गंगोत्री माने हिमालय के ऊपर जहां से गंगा निकली है, वो वहां तक बादल पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? वो सब नीचे से ऊपर को ही जाना हुआ है ना पानी, पहले समुद्र में से ऐसा ऐसा उड़ा और फिर वो ऐसा चला, और चलते चलते कितनी लंबी यात्रा करता है, और फिर वो वहां जाके समुद्र पर समझ लो वहां पे बिल्कुल बर्फ जैसा पत्थर बन के जम जाता है, और फिर वहां से धीरे धीरे पिघलता है, और फिर तुम्हारी जमीन पे से होते 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 फिर उसी बंगाल की खाड़ी में जाता है। अब वो खेतों को में जाता है, बीच बीच में सिंचाई होती है, पेड़ों में जाता है, नींबू का रस बनता है, आम का रस बनता है, कितनी 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 सब चीजों में, मेरा मतलब है कि नहीं, और लौट करके फिर वहां पहुंच जाता है, फिर वो चक्कर कौन करता है, इसे भगवान करते रहते होंगे। इस पानी के ऐसे घूमने का जो चक्र है, ये ऐसा ऐसा घूमता रहता है, ये कौन करता है मुझे बता, है ना? बिल्कुल ऑटोमेटिक, बिल्कुल साइलेंट वर्क है ना, एक भी किसी जीव का रंच मात्र भी इसमें उपयोग नहीं लगा है, अब बिना उपयोग के होता है, अब उपयोग करके देखना है ना, तो घर पर तपेली में पानी गर्म करो नीचे से और ऊपर उसके ऊपर ढक्कन रख दो, तो पानी की भाप बन बन के ऊपर आकर के दर्पण में बिल्कुल मुंह ऊपर वाले ढक्कन में लग जाती है कि नहीं, जाके ऊपर ऊपर जाके सबसे ऊपर जाकर के होती हुई पानी की बूंदें, और फिर बस तीर ठंडे होकर धीरे धीरे उसी पानी में गिर जाती है, फिर वही चक्र घूमता है, वो जो चक्र तुम्हारी तपेली में घूमता है, डिस्ट्रिक्ट वाटर जिससे बनता है, वही पानी जो ऊपर आया है ना, उसको निकाल के अलग शीशी में डालते जाओ, वो डिस्ट्रिक्ट वाटर है, और क्या है? तो कितना गंदा पानी था वो, और फिर वो कितना पवित्र हो गया, और पवित्र होकर नीचे आकर के ऊपर से नीचे को बहते हुए फिर गंदा हो गया, फिर पवित्र हो गया, फिर गंदा हो गया, दुष्ट ऐसा। अभी अनंत संसार का चक्र चल रहा है, पर एक दफे वो उल्टा चलना शुरू हुआ, अब पर के कर्तृत्व का चल रहा है ना, फिर पर के आकर्तृत्व होके निज का सहित ज्ञातत्व भाव हुआ, तो बस वो ऐसा घूमता है, तो वो ऐसा कि मोक्ष की तरफ चला जाता है, ऊपर जाके भाव भर के उड़ के सिद्ध शिला में ठंडा बर्फ जैसा अनंत काल तक के लिए जम जाता है। कितना साइलेंट वर्क है देखो, है विकल्प ही कर्म विकल्प करता हो गए, जो विकल्प को करे वही तो करता हो गए। अब जो विकल्प को करे, ये भाषा कैसी है, उस विकल्प का कर्ता बनता है, बनता है माने स्वयं को मानता है, है ना। नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, और अज्ञानी जीव पर लिखा ना कि सभी कल्प, अज्ञानी माने सभी कल्पस्य, लिखा ना ऊपर सभी कल्पस्य नश्यति। जो विकल्प वाला है, जो उन विकल्पों का कर्ता बनता है, वो नश्यति माने नाश को प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता है माने विकल्प आदि रूप परिणमित होता रहता है, बंद होता है, चतुर्गति में घूमता रहता है, आनंद उठाता रहता है। और न जातु कर्ति कर्मत्वम, वो कर्ता कर्मपना का भार उसके माथे से कभी नहीं हटेगा। क्या इसके लिए किमर पर्याय ने लिखा ना कि आज तक ऐसा कोई बेटा नहीं हुआ है कि जो बाप के बोझे को उतार ले ले, ले क्यों। वो कहता है बेटा मैं तैयार हूं, अब आप छोड़ दो सब, आप बिल्कुल आओ मत ऑफिस में, देखो ही मत, यहां करो ही मत। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तू भी कर, तू कर पूरे ही कर, मैंने तेरे को सौंप दिया है, हम बस अपन दोनों जने मिलके करेंगे, डबल काम हो जाएगा। वो कहां, वो कहां निवृत्त होता है बोलिए, क्योंकि उसे निवृत्त होना ही नहीं है, कोई नहीं है इसलिए निवृत्त नहीं होना है। तो जिसे निवृत्त होना है उसको कोई नहीं हो, तो निवृत्त हो जाता है कि कोई काम संभालने वाला होगा तब निवृत्त होगा। अपने हजारों उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि वो चक्रवर्ती थे, इतना छह खंड का राज्य था, लड़ाई लड़ते 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 और वहीं पर बैराग हो गया, क्यों, तो वहीं पर वो सामने वाला तीर चला रहा और उसने उतार के किसन के कपड़े खोल के इधर के और दीक्षा ले ली, चला गया गोली से मर गया, कुछ भी हो गया, ख्याल में आई ना। वो उसने कहा कि कौन संभालेगा, कौन देखेगा, वो संभालने वाला तो पीछे पड़ा है ना तेरे, वो तुझे मारकर राज्य लेगा तो सवराजी राज्य संभालने के लिए ले रहा है कि बर्बाद करने के लिए, कि तेरे सामने चुनाव में खड़ा है जान ठोक कर, तो वो जो चुनाव जीत के तो वो प्रधानमंत्री बन के वो देश को बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री बन रहा है कि देश को संभालने के लिए, क्यों, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, वो कहता मैं संभालूंगा ना, तो कहता कोई संभालने वाला नहीं है, अरे लोग तो तेरे मरने मारने की कीमत पर भी संभालने को तैयार बैठे हैं, हर एक की गद्दी को है? तेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्यों। न जात कर्त कर्मत्वम, कर्ता कर्मपना कभी खत्म नहीं होगा, किसको, सभी कल्पस्य, तू विकल्प मेर दे तो तेरा कर्ता कर्म भाव नष्ट हो जाएगा। तो एक बिल्कुल अंतर में साइलेंट होने वाली अनंत क्रांति है, इस जैन दर्शन जो सम्य दर्शन है वो ऐसी साइलेंट क्रांति है कि जिसमें कुछ उखाड़ पछाड़ होना ही नहीं है, लेकिन इस जगत को क्रांति ऐसी समझ में नहीं आती है। देखो पढ़ते हैं हम, विकल्प करने वाला करता है और वह विकल्प ही उसका कर्म है, इस प्रकार सविकल्प पुरुषों का कर्ता कर्म प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जब तक विकल्प भाव है तब तक कर्ता कर्म भाव है, और जब विकल्पों का अभाव हो जाता है तब कर्ता कर्म भाव का भी अभाव हो जाता है। इसे उल्टा भी कह सकते हो कि जब तेरा कर्ता कर्म भाव का अभाव हो जाएगा तो तेरे विकल्प भी धीरे धीरे समन होने लगेंगे। जब तेरे को एकदम कर्तृत्व का विकल्प है तो विकल्प खड़े होते हैं बहुत 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 बहुत। जिसको जिस तरह का भाव से वो परिणमित होता है उसे उस तरह के ही विकल्प खड़े होते हैं। वो उदाहरण दिया जाता है ना कि सुबह कोई महिला है तो वो उठती है तो उठते ही उज्जैन आंख खुलती है कि सपने में भी यही विकल्प आता है कि चार मेहमान आ गए हैं, अब मुझको खाना बनाना है, चाय पानी का पूछना है, ये करना है ये करना है, फिर बच्चों को जल्दी तैयार करके स्कूल भेजना है। तो सुबह से उठते ही, सोते में उठते ही उन्हीं विकल्पों से घिर जाती है कि नहीं घिर जाती है। फिर उसी घर में दूसरा एक पुरुष है, वो पुरुष ऑफिस में जाना है, आज इतने काम निपटाना है, ये करना है, तो वो उन विकल्पों से घिर जाता है। वहीं पर दोनों बिल्कुल एक ही जगह है ना, पर दोनों अपने 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 टाइप के विकल्पों से घिर जाते हैं कि नहीं घिर जाते हैं, ये करना है मुझे, ये करना है, ये करना है, मतलब जो जिस टाइप का अपना कर्तव्य तो जिसने माथे पर ओढ़ लिया है, उसे सुबह से शाम तक उसी टाइप के विकल्पों से वो घिर जाता है ना। अब उस विकल्प का करता है, और वो विकल्पों से वो ना घिरे तो सब विकल्प होंगे ही नहीं, तो नहीं होंगे तो तेरे बाप का क्या बिगड़ता है, नहीं होंगे नहीं होने देना, क्यों कौन करेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, कौन जो मैं करता हूं, तू तो अकेले विकल्प का करता था, मुझे याद आता है, तो विकल्प नहीं होगे तो क्या होगा वो, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। देखो यहां मोह राग देशमय विकल्पों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थापित करने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को सविकल्प कहा गया है। सविकल्प कहा गया है ना, विकल्पों वाला, विकल्प सहित, विकल्पक वो का लोप हो गया और सा का आगम हो गया, आगे विकल्प का नहीं, सविकल्प सा लगा दिया तो का लगाने की जरूरत नहीं है, दो दो एक साथ नहीं लगते हैं, है ना। ऐसे सविकल्प अज्ञानी के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश कभी नहीं होता, यही बताया गया है इस छंद में। कलश टीकाकार पांडे राजमल जी की दृष्टि में भी कर्म जनित रागादि भावों में अपनापन मानने वाला मिथ्या दृष्टि ही सविकल्प है, उनने ये परिभाषा दी है सविकल्प की। और इस प्रकार के सविकल्प मिथ्या दृष्टि, सविकल्प माने मिथ्या दृष्टि के कर्ता कर्म भाव कभी नष्ट नहीं होता, इस कलश का भाव स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं। देखो उनकी भाषा, ये तो अनुवाद की हुई सुधारी भाषा है पंडित फूलचंद जी की, उनकी तो बिल्कुल 400 वर्ष पुरानी भाषा है, विचित्र। कोई ऐसा मानेगा कि जीव द्रव्य सदा ही अकर्ता है तो उसके प्रति ऐसा समाधान है कि जितने काल तक जीव का सम्यक गुण प्रकट नहीं होता उतने काल तक जीव मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि हो तो अशुद्ध परिणाम का कर्ता होता है, सो जब सम्यक गुण प्रकट होता है तब अशुद्ध परिणाम मिटता है और तब अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता, है ना। कोई मानेगा कि हमेशा यहाँ करता है, ठीक है ना, तो उसका जवाब दिया उन्होंने, अज्ञान अवस्था में रागादि का कर्ता था, जब वो अज्ञान अवस्था हटेगी तो रागादि घटेंगे तो उनका कर्तापन उसको हटेगा, ठीक है ना। कलश टीकाकार के उक्त कथन में यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि परद्रव्य और रागादि भावों में एकत्वमत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व को भावों को ही यहां शुद्ध भाव कहा गया है। क्या क्या है इसमें, क्या क्या अर्थ है बोलो, हैं? किसी का ध्यान गया इस पर? ये कह रहे कि अशुद्ध भाव किसका नाम है, राग हुआ उसका नाम अशुद्ध भाव नहीं है, विकल्प हुआ उसका नाम अशुद्ध भाव नहीं है, उस विकल्प का कर्ता मैं हूं, उसका भोक्ता मैं हूं, वो विकल्प मेरा है, ये भाव है, ये इसका नाम वो विकल्प है, ये अज्ञान भाव उसका नाम विकल्प है, उसका नाम है विकल्प है, वो जो तुमको ऐसा काम करने का विकल्प हुआ ये विकल्प नहीं है, वो तो चारित्रमोह संबंधी विकल्प है, वहां उसको विकल्प नहीं कह रहे हैं, और वो विकल्प इतना बड़ा खतरनाक नहीं है क्योंकि वो विकल्प तो छठवें गुण स्थान तक भी निरंतर होता रहता है ना। अतः इनका कर्ता है और सम्मदृष्टि के ये भाव नहीं है, अतः इनका कर्ता नहीं है। जब कर्तृत्व आदि के भाव सम्यक दृष्टि के हैं ही नहीं, ये कौन जो जिस सम्यक दृष्टि में वे राग भाव हो रहे हैं उस सम्यक दृष्टि की बात कह रहे हैं कि वो हैं ही नहीं। अब क्या नहीं है, करने का विकल्प तो हो रहा है और विकल्प में कर्तृत्व नहीं है। हमको लग रहा है कि जबरदस्ती वो बराबर विकल्प किए जा रहा है और मान रहे विकल्प है और फिर कह रहे उसके विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं। अब बहुत बड़ा अंतर है। शिखर जी में यही तो हुआ था कि सब कहते थे कि भाई वो रागा अधिक करता है लेकिन रागा अधिक का करता नहीं है। तो मैंने कहा जिस रागा अधिक का करता नहीं है वो रागा अधिक कहां कर रहा हो रहा है उसके, वो तो मिथ्यात्व जन्य रागा अधिक का करता नहीं है। अब वो तो उसके हो ही नहीं रहा है, इसमें क्या गजब हो गया। यानी उसको हम बहुत बड़ी समस्या समझते हैं कि रागा अधिक का करता ज्ञानी जीव नहीं है। तो वो राग हो रहा, हाँ हो रहा है, तो वो हो रहा है फिर करता कैसे नहीं है। अरे भाई हम जिसका करता नहीं है कह रहे वो मिथ्यात्व संबंधी राग कह रहे, अनंतानुबंधी राग कह रहे, और जो राग हो रहा वो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संबंधी है। एकदम कितना अंतर है। अब वो समझ रहा है कि भाई उसे बहुत बड़ा अन्याय है कि अज्ञानी वही राग करे तो उसे बंद हो, ज्ञानी वही राग करे तो उसे बंद नहीं हो, और फिर क्रिया पे लाओ तो फिर और ही गजब हो जाता है कि अज्ञानी ने भी उसे बंदूक चलाई और मारा, ज्ञानी ने भी विषय भोग भोगा, ज्ञानी ने भी लड्डू खाए और उसे बंद नहीं हो रहा। क्यों? अरे अज्ञानी तो उसका कर्ता बन रहा इसकी वजह से बंद हो रहा, अब वो उसका कर्ता है भी नहीं और बन भी नहीं रहा। तो वो जो अंदर श्रद्धा के अंदर में उसका जो भाव है और उसका वो पता उसको ख्याल में नहीं आता है ना, है ना। कलश टीकाकार के उत्कथन से तो हो गया ना। अब कर्तृत्वादि भाव सम्य दृष्टि के हैं ही नहीं तो उनका कर्ता किस प्रकार हो सकता है। तात्पर्य यह है कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व संबंधी रागादि हैं और वह उनका कर्ता है, और सम्य दृष्टि के मिथ्यात्व संबंधी रागादि हैं ही नहीं अतः वह उनका कर्ता भी नहीं है। कितनी सीधी सरल बात है। सम्य दृष्टि के जो चारित्र मोह संबंधी रागादि भाव अभी विद्यमान हैं उनकी बात यहां नहीं की जा रही है। यहां तो रागादि भावों में एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रूप रागादि परिणामों की बात है। बहुत स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, कुछ उपाय नहीं है उसका। वो ध्यान से पढ़ता ही नहीं है, ऐसे उन्होंने कैसे मशीन जैसा पढ़ता जा चला जाता है और उसे बिल्कुल भाव भाषित नहीं होता, कभी कभी ऐसा लगता है। इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए कभी वह बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस छंद का भावानुवाद इस प्रकार करते हैं। देखो पढ़ो भी। सीधी सीधी बात है कि निषिद्ध मिथ्या भाव बहु धरे मिथ्यात्वी जीव, मिथ्यात्वी माने सविकल्प विकल्प वाला जीव निष्दिन मिथ्या भावों को धारण करता है और इसलिए वो भाव कर्मों का हमेशा करता। भाव कर्म माने वो विकल्प हो गया ना, देव कर्म तो ज्ञान वर्णादि का, ज्ञान वर्णादि कारवान वर्णा का ज्ञान वर्णादि रूप परिणमित होना उसका नाम द्रव्य कर्म, और आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव होना उसका नाम भाव कर्म। तो भाव कर्म का कर्ता निरंतर अज्ञानी जीव होता है। मिथ्या दृष्टि माने सभी कल्प जीव दिन रात मिथ्या भावों को धारण किए रहता है, किया करता है, इस कारण भाव कर्मों का कर्ता कहा गया है। यहां बनारसी दास ने सविकल्प का अर्थ सीधा मिथ्या दृष्टि ही ले लिया है। तात्पर्य यह है कि यहां चरित्र मोह संबंधी विकल्पों को विकल्प की श्रेणी में नहीं रखा है, है ना। अभी जो ये बारीक बात है ना, अब उन्होंने कह दिया सविकल्प माने मिथ्या दृष्टि, अब कौन सी डिक्शनरी में मिलेगा। अब वो सविकल्प माने कि जो उन विकल्पों का कर्ता अपने को मानता है ऐसा जीव। सविकल्प शब्द का अर्थ स्वामी जी इस प्रकार करते हैं। देखो स्वामी जी की मैंने बोला ना, स्वामी जी को मैंने कई इसलिए कोट किया है कि देखो इस बात को जो इतनी गहराई से अपन कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से पकड़ में आ रही थी, उन्होंने बिना किसी के समझाए पकड़ ली। उन्हें समझाने वाला कौन था यहां, क्यों इस भव में तो नहीं था ना। अब पिछले भव में श्री मंदिर परमात्मा से सुन के आए थे कि किसी और ज्ञानी से देशना लब्धि दी थी, कहीं से आए थे, समझ के तो आए थे ना। ये जो समझ है ये महत्वपूर्ण है कि किससे समझ के आए थे, ये महत्वपूर्ण है। बोला इस भव में वे गीत मिथ्यात्व में पैदा हुए है ना, और वहां कोई इस बात को बताने वाला नहीं था। और दिगंबर जब वे बन गए तब वो समझने के बाद ही बने, और यहां उसके बाद उसको स्वीकार करने वाले भी नहीं मिले, तो वो बात समझाने वाले तो कहां मिलते क्या किसी आदि से अंत तक। तो अपने देशना लब्धि के बिना नहीं होता है, तो कहीं से समझ के आए थे ना। तो अपने पूरा भक्त को समझ में आए तो अपने, और फिर जो टोडरमंजी रस्मों चिट्ठी में लिखा कि अनुभूति कैसे होती है, तो उन्होंने कहा शास्त्रों में से पढ़ के आत्मा का स्वरूप जाना और फिर उससे उसमें परिणाम मगन किए, तो उसका नाम हो गया मतलब शास्त्र से होने वाली आत्मोपलब्धि। फिर उन्होंने कहा कि हमने तर्क युक्ति से आत्मा का निर्णय किया अनुमान से, और उसमें अपने परिणाम मगन किए, तो वो कहेंगे हम तर्कोपलब्धि, तर्क से आत्मा की उपलब्धि हुई। फिर उन्होंने कहा कि पहले किसी के पढ़े कोई शास्त्र पढ़ा था अथवा किसी गुरु के मुख से सुने थे, अब फिर बाद में उसे याद आया और उसके आधार पर हुई, तो कहेंगे स्मृति जन्य आत्मोपलब्धि। अब स्मृति जन्य की बड़ी विचित्र बात है कि अपन जब ऐसा घटित करते हैं तो लोगों को जरा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा है कि अभी आप अपना प्रवचन हो रहा है ना, और आप बराबर ध्यान से सुन रहे हैं और उसको बराबर उसे अपनी धारणा में ले रहे हैं, माने वहां तक पहुंच रही वो बाधा के लिए कान से ही नहीं उड़ रही है, अवग्रह हो रहा है, ईहा हो रही है, अवाय हो रही है और धारणा हो रही है, और वहां तक लेवल तक पहुंचे और फिर अब किसी काम में उलझ गए, जाके जाके टीवी का सीरियल देखने लग गए, जाकर के सिनेमा चले गए, एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए, या तो दूसरी क्लास लग गई तो वो पढ़ने लग गए, ख्याल नहीं ना। अब वो चार छह घंटे बाद, एक दो दिन बाद, महीना दो महीने बाद वो बात आपके ध्यान में आई और आपने अपने परिणाम उसमें मगन किए, तो उसे कहेंगे स्मृति जन्य ज्ञान से आपको आत्मानुभूति हुई। समझ आए राजावरा जी, इस तरह का आपकी ख्याल में आ गया ना। अब आगे बढ़ो कि यदि भाग्य से अभी 10 साल बाद याद आई, क्यों गुरुदेव जो सुनी थी गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया, जब तक विरोध करते रहे धारणा में बनी रही और बाद में स्मृति में आई और उसमें परिणाम मंगन किए और सम्मान दर्शन हो गया। अब और पीछे बढ़ो कि आप मर गए और अगले भव में याद आई और फिर आपने परिणाम मंगन करे और सम्मान दर्शन हो गया, तो अब इसमें क्या गजब हो गया। उसे हम अगले भव में याद आएगी तो उसे हम जात मरण कहेंगे, ठीक है ना। इसी भव में याद आ गई तो उसे स्मरण कहेंगे, और अगले भव में याद आई तो हम जात स्मरण कहेंगे, यही तो फर्क है। अब जरा इसको समझो कि हमको अभी आपने कर लिया ये अच्छा है कि 2 घंटे बाद करोगे ये अच्छा है, बोलो। 2 घंटे बाद करोगे वो अच्छा है कि 2 दिन बाद करोगे वो अच्छा है। कब यहां 5 साल तक पढ़ते ही पढ़ते रहोगे और फिर घर जाओगे झंडे पड़ेंगे फिर काम करना पड़ेगा फिर आएगी याद और फिर करोगे तो वो अच्छा है, उतने उतने चांस कम है ना। जितना जितना काल कम जाएगा उतने उतने चांस ज्यादा है, और जितना जितना काल जाएगा उतने उतने चांस कम है, और भक्त बदल गया तो चांस बहुत कम हो गया ना। ऐसी स्मृति तो लाखों को होती है और जात स्मरण तो लाखों में से एक आध को होता है, तो वो अच्छी स्थिति है अरुणा जी की बुरी स्थिति। और उसको हमने बढ़िया माना कि हाँ जातमान मानो क्या क्या हो गया, जातमान सिंह निकल जाएगा, जातमान हो गया तो क्या हो गया, जातमान हो गया उससे हो गया अनुभव, उससे सिद्ध हुआ कि ये ऐसा है कि उसने जब समझाया था तब नहीं समझा, अब आई अकल। अमर कहते हैं ना क्या कि जब मैंने जिंदगी भर समझाया, मेरे एक मित्र है, नाम अभी नहीं बताता हूँ, मेरे से भी बड़ी उम्र के हैं, अभी जिंदा हैं, तो जब तक उनके पिताजी जिंदा थे तो रोजीना उनको डांट डांट के समझाते थे कि अरे तू क्या करता है, पंडित जी के पास जाया कर, ये तत्व सुना कर, ये समझा कर, और ये बहुत असली चीज है, बढ़िया चीज है। लेकिन जब तक पिताजी मरे नहीं तब तक उन्होंने कुछ नहीं सुना और माना नहीं। और जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया उसके 2-4 साल बाद, फिर वो आने लग गया और ऐसा आने लग गया कि सुबह 5 बजे से उठ के मेरे साथ ही रहता, फिर घूमने चलो तो आ जाओ, फिर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और आज बहुत बड़ा विद्वान है, प्रवचन करता है, ख्याल में है ना है? और वो एक कहते था, और वो एक कहते हैं अपने मुंह से कि मैंने पिताजी ने बहुत समझाया और मैंने नहीं माना और आपकी बात नहीं सुनी और अब मैंने मानी। आप समझे ना, तो ये वो पछताने की बात है कि वो मान लेते पिताजी की वो अच्छी बात थी, माने उस भव में नहीं माना और अगले भव में माना, क्यों? और ये 2 भव पुराना आजाद स्मरण है तो 2 भव बाद माना, तो जितना देर हुए उतना गलती ज्यादा हुई ना, तो उसको तुम तो उतना महिमा मंडित करते हो, उसमें दम क्या है? वो दम तो उसमें है कि वो आत्मा का अनुभव हुआ। और हजारों लाखों लोग दात भ्रमण वाले ऐसे हैं कि वो ने उनको आत्मा संबंधी होता ही नहीं, वो जगत संबंधी लड़ाई झगड़े के हुए ना, और वही उनका ज्ञान काम करता है। नारकियों का अभिज्ञान मालूम क्या काम करता है, कि माँ भी नरक में पहुंच गई और बेटा भी नरक में पहुंच गया, तो उसे मालूम क्या याद आता है कि जब मैं बिल्कुल छोटा था तो उसकी माँ रोजाना उसकी आंख में काजल लगाती थी, तो कहते ये माँ मेरी रोजाना आंख फोड़ने की कोशिश करती थी और मैं मुश्किल से रो रो कर मुश्किल से बचा पाई, यदि नहीं चाहते फोड़ ही डालती, याद कर करके फिर उसकी पिटाई करता है वहां। माने उसको अवध ज्ञान भी ऐसा होता है, उसे विभंगावधि बोलते है ना, ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं, उल्टी उल्टी बातें याद आती हैं, ख्याल में है ना, कि देखो ये वही पिताजी हैं कि जो मुझे डंडा मार मार के स्कूल भेजते थे और मैं नहीं जाता था, क्या मैं नहीं जाता था, वो कहते खाना बंद कर देते थे और माँ छिपके खाना देती थी तो लड़ पड़ते थे उसे कि नहीं देना खाना, वो याद आती है उसे। लेकिन जब उनके डंडा मारने से मैं गया और पढ़ लिख गया और कलेक्टर बन गया, नहीं तो मैं कहाँ नौकरी करता, वो याद नहीं रहता उसको, वो उसको उसी रूप में याद करता है, क्या वो दूसरा आदमी उसे उपकार के रूप में याद करता है। अपने तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, कौन सी मुझे मालूम है, समय हो गया, वो कहानी है ना वो बायभूत और अग्निभूत की, जो सगे भाइयों को पढ़ाया था, क्यों है याद आई थोड़ी बहुत कि नहीं, कि 2 सगे भाई थे, बाप बहुत बड़ा विद्वान था, उसने पढ़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं पढ़े सो नहीं पढ़े। जब उसका स्वर्गवास हो गया तो राजगुरु का पद खाली हुआ, वो राजगुरु था, तो उसी के बेटे को दे देते पुराने जमाने में, ऐसा कोई पक्षपात नहीं कहलाता था ये कि बेटे को क्यों दे दिया, उसको ही देते थे, तो उसे राजगुरु बना दिया। वो राजगुरु बना दिया तो मुंह रखते कुछ नहीं उनको आता था, आखिरकार 2-4 दिन में पोल खुल गई और उनकी छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई तो मां के पास आके रोने लग गए, तो माँ ने कहा बेटा पिताजी ने बहुत समझाया था, हमने भी कहा था तुम नहीं पढ़े, अभी भी कोई बात नहीं है, तुम्हारे मामा भी उतना ही बड़े विद्वान हैं और वे अभी जिंदा हैं, तुम उनके पास जाओ और वहां पढ़ लेना तुम। तो वो मामा के यहां गए दोनों भाई, तो मामा तो जानते थे ये मेरे भांजे महानालायक, बाप ने बहुत कोशिश करी और पढ़े नहीं और अब मेरे पास आए हैं पढ़ने, यदि मैं इसे लाड़ प्यार से रखूंगा तो फिर भी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए उनने कहा कि तुम भांजे हो मेरे, कि हाँ भांजे हैं, मम्मी ने कह के भेजा है कि तुम सगे मामा हो हमारे, कि मेरे तो कोई बहन ही नहीं थी, ये भांजे कहां से आ गए, क्या बोला उनने, मेरे तो कोई बहन ही नहीं थी, ये भांजे कहां से आ गए, क्या आप हमारे मामा नहीं हो, कि नहीं है नहीं है, लेकिन अब हम क्या करें, हम क्या करें, कि देखो भाई तुम पढ़ने आए हो ना, हाँ मामा नहीं है हम, लेकिन तुम चाहो तो हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं तुम चाहो तो, लेकिन तुम्हें अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। तो पुराने जमाने में और तो कुछ होता नहीं था कि आश्रम में गाय भैंस जहां बनती है वहां पर लेटे रहना पड़े रहना, कोई कमरा दे दिया वहीं से गुरु जी ने और कह दिया कि रोज ना भीख मांग के जाओ, वो बाम उनको धन केवल भिक्षा क्या मिल जाती थी। भीख विद्यार्थियों को भीख बहुत मिलती थी कि हम यहां पढ़ते हैं और इसलिए हम कमाते नहीं है, तो जाके देते थे, गांव वाले दे देते थे, तो भीख मांग करके खाओ। तो उन्होंने भीख मांग खा खा के बन के बहुत बड़े विद्वान बन गए, टॉप के विद्वान बन गए, बाप जैसे ही बन गए, मामा जैसे ही बन गए। जब विदाई समारोह होने लगा तो मामा ने सच्ची बात बताई कि भैया हम तुम्हारे मामा हैं, ये सच्ची बात है, लेकिन तुम बाप के लाड़ में नहीं पड़े थे, ऐसे मेरे लाड़ में भी नहीं पड़ते, इसलिए मैंने तुमको कहा कि तुम मेरे मामा, हम तुम्हारे मामा नहीं है, और हमने तुमको पढ़ा दिया, तुम विद्वान बन गए, नहीं तो नहीं बन पाते। तो एक तो बहुत खुश हुआ कि मामा तुमने बहुत बढ़िया किया, अरे तुम मामा बन जाते तो हम सचमुच नहीं बन पाते। तो बहुत बहुत उपकार माना। वो कौन जीव है मानो, वो जो बाद में पार्श्वनाथ बना, वो जीव है, पार्श्वनाथ की कहानी है। और वो दूसरा भाई था, अच्छा तूने हमसे भीख मंगवाई क्या और उस इतना शत्रु नंबर एक बन गया उसका, बोलो। अब बात तो दोनों के साथ एक ही की थी ना, फिर भी एक ने उसकी नारकी प्रवृत्ति थी तो उसे और चीज याद रही क्या है? और उसकी ऐसी प्रवृत्ति थी तो उसे वो याद रही, अच्छी प्रवृत्ति थी तो भले ही इसने हमसे भीख मंगवाई लेकिन हम विद्वान बन गए, उसे वो बात याद रही। तो ऐसे ही जो उपकार करने वाले को, जो लोक में जिसे हम उपकार कहते हैं, धर्म के हिसाब से कोई किसी का उपकार कर ही नहीं सकता, ख्याल में, धर्म के हिसाब से उपकार कर ही नहीं सकता, लेकिन जिस दृष्टि से कर सकता है वो उसको ऐसा भी प्रणमन होता है अपनी अपनी उपादान की योग्यता से, है ना। अब स्वामी जी का कथन अपन कल पढ़ेंगे, देखेंगे।